भरत ने उदारता का यह लक्षण दिया है जो दिव्य भाव से व्याप्त श्रृंगार और अद्भुत से युक्त किया हुआ अनेक भाव से संयुक्त होता है, वह उदारता गुण है। अभिनव गुप्त ने भरत के लक्षण के प्रथम दो विशेषणों से अर्थगत औदार्य माना है, जो मानवचित को भी दिव्य के रूप में तथा करुणादि से युक्त को भी ललित श्रृंगार के रूप में और वीरता के योग्य को भी अद्भुत से युक्त के रूप में वर्णित किया जाता है, अथवा उनके विभाव अनुभव आदि से जो उद्धृत होता है वह अर्थगत औदार्य है। इसे ही अन्यों ने अग्राम्यता कहा है। अनेक भाव संयुक्तम से शब्दगत औदार्य का लक्षण दिया है, यह निम्नोक्त रूप में हो सकता है। एक, एक भाषा चित्र का अनेकता चित्रत्व। दो, एक पद का अनेक पदों के रूप में व्यक्त होना। तीन, पदों में अक्षर संख्या की विचित्रता। चार, संधि की सजातीयता। पांच, वर्ण विन्यास की दृष्टि से निकटता। नाट्यशास्त्र के कुछ संस्करण में इस गुण का उदात्त नाम से यह लक्षण उपलब्ध है, जो सौष्ठव से संयुक्त अनेक अर्थों की विशेषता वाले तथा अत्यंत चित्र अर्थों वाले सुंदर कथनों से युक्त होता है, वह उदात्त कहलाता है। स्पष्ट है कि दंडी का औदार्य का लक्षण भरत के औदार्य के लक्षण से भिन्न है। दंडी का सर्वाधिक साम्य मिलता है अग्नि पुराण में। वहां का विवरण यह है कि वहां यह गुण शब्दगत एवं अर्थगत दोनों प्रकार का माना है। उदात्त पदों से युक्त होना शब्द औदार्य है। यह उदात्तन पदता श्लाघ्य विशेषणों के प्रयोग से आती है। दंडी ने इसी कथन के उत्तरांश को 79वें श्लोक में कैसी दृश्यते कहकर उद्घृत किया है। दानशीलता आदि गुण का तथा हृदय की अत्यधिक शुष्टता का वर्णित होना अर्थ औदार्य है। इस कथन की समानता दंडी के प्रथम कथन 78-76 श्लोक तथा उसके उदाहरण श्लोक 77 से है। दंडी के प्रथम लक्षण की प्रथम अर्धाली अग्नि पुराण में शब्दार्थ का उपकार करने वाले उदारत्वा पर पर्याय सौभाग्य नामक गुण के लक्षण में मिलती है। श्लोक ओजह समास भूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितं पद्येऽप्यदाक्षिणात्यानामिदमेकं परायणम् तद्गुरुणां लघुनां च बाहुल्याल्पत्वमिश्रणैः उच्चावचः प्रकारं सद्दृश्यमाख्यायिकादिषु। समास की प्रचुरता ओजस होता है, यह गद्य का प्राण है। वैदर्भों से भिन्न गौणी कवियों को पद्य में भी यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गुरु और लघु वर्णों की अधिकता अल्पता और मिश्रण से अनेक प्रकार का होता हुआ आख्यायिका आदि में देखा जाना चाहिए। अगले पांच श्लोकों में ओजस नामक अष्टम गुण का प्रतिपादन दोनों मार्गों की दृष्टि से किया गया है। ओजस का मुख्य तत्व है समास की अधिकता। समस्त होने वाले पदों में वर्णों की तीन प्रकार की स्थिति से यह तीन प्रकार का हो सकता है। क, गुरु संयोग पूर्व ह्रस्व एवं दीर्घ वर्णों की बहुतायत तथा लघु असंयोग परक ह्रस्व वर्णों की अल्पता से। ख, लघु वर्णों की अधिकता तथा गुरु वर्णों की अल्पता से। ग, इन दोनों के मिश्रण से अर्थात गुरु और लघु वर्णों की समानता से। रत्नश्री में उच्चावच प्रकार का अर्थ नानाविध अनियत प्रयोग किया है। तरुण वाचस्पति ने गुरु बहुल लघु बहुल और उत्कली का प्राय ये तीन भेद गिनाकर बहुत प्रकार वाला बताया है। वादी जंघाल देव ने गुरु वर्णों के बाहुल्य अल्पत्व और मिश्रण से उच्च ओज और लघु वर्णों के बाहुल्य अल्पत्व और मिश्रण से अवचह ओज इस प्रकार दो तरह का बताया है, किंतु इस व्याख्या में स्पष्ट नहीं है कि जब गुरु वर्णों का अल्पत्व होगा यह लघु वर्णों का बाहुल्य कैसे नहीं होगा। बहुलता और अल्पता परस्पर सापेक्ष है, ऐसी स्थिति में उसे गुरु वर्णों की अल्पता से उच्च ओज कहेंगे या लघु वर्णों की बहुलता से अवच ओज। अतः वर्ण विन्यास की दृष्टि से ओज के उपरयुक्त तीन भेद करना ही उचित है। दंडी का कथन है कि तीन प्रकार के वर्ण विन्यास वाले पदों के समास की अधिकता से होने वाला ओज गुण वैदर्भ मार्ग में आख्यायिका आदि गद्य काव्य का प्राणभूत तत्व माना जाता है, जबकि गौण मार्ग में गद्य हो चाहे पद्य ओज ही उन्हें सर्वाधिक प्रिय है।